ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक क्रमांक 37। ये तो श्लोक नहीं है, गद्य रूप में लिखा हुआ है, हम लोग धीरे धीरे से पढ़ लेंगे। अहो असाधु अनुष्ठितम यत् अभिनिवेशितो अहम् इन्द्रियैर् अविद्या रचित विषम विषयान्धकूपे तद् अलमलम् अमुष्या वनिताया विनोदमृगम् माम धिग धिग इति गरहयान चकार। अहो असाध्व अनुष्ठितम् यदभिनिवेशितो अहम् इन्द्रियैर् अविद्यारचित विषम विषयान्धकूपे तद् अलम अलम अमुष्या वनिताया विनोद मृगम् माम धिग धिगेते गरहयांचकार। पढ़ी थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़िए, ऊंची आवाज। माता है धन्यवाद। भारत में जन्म लेकर के अगर संस्कृत नहीं सीखा तो इससे भारत की भारी बदनामी होती है। सर्वेषां भक्तानां सुस्वागतम, पर बहुत सरल भाषा है, पर अभ्यास छूट चुका है इसलिए हमको कठिनाई हो रही है। ठीक है, अहो असाध्य अनुष्ठितम यदभिनिवेशितो अहम इंद्रियैर अविद्या रचित विषम विषयांधकूपी तदलम अलम मनुष्य वनिताया विनोद मृगमाम धिग धिग इति गर्हयांचकार। शब्दानुवाद, अहो ओहो असाधु अच्छा नहीं हुआ, अनुष्ठितम हुआ, यत क्योंकि अभिनिवेशितः पूर्णतया निमग्न, अहम मैं इंद्रियी इंद्रिय भोगों के लिए अविद्या अज्ञान से रचित बनाया हुआ विषम दुखदायी विषयांध कूप इंद्रिय भोग रूपी अंधेरे कुएं में तत वह अलम तुच्छ अलम महत्वहीन तुच्छ अमुष्या उस बनितायाः पत्नी का विनोद मृगम नाचते हुए बंदर की तरह माम मुझको धिक धिक्कार है। फिर से कह रहा है धिक धिक्कार है इति इस प्रकार गर्हयान आलोचना चकार की। राजा ने अपनी भत्सना इस प्रकार की, ओहो इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ, मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, बहुत अच्छा बहुत हो गया, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए, तनिक मेरी ओर तो देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है। इसको सब पढ़ना चाहिए, मैं समझता मिल के पढ़े। राजा ने अपनी भत्सना इस प्रकार से की, ओहो इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ, मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, बहुत हो गया, अब मुझे और भोगना नहीं चाहिए, तनिक मेरी ओर तो देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथ में, जोर से बोलो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है। तात्पर्य, महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए। ये कार्य इतने महान है कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न हो सके। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए थे, किंतु वह इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकतावादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट हैं कि वो बड़े बड़े पुल, सड़कें तथा मशीनों बना सकते हैं, परंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य अत्यंत नगण्य है। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद भी महाराज प्रियव्रत अपने को धिक्कार सकते हैं तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसे उन्नति से कोई सरोकार नहीं। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता है, और उसे वो भी पता नहीं कि अगले जन्म में वो किस प्रकार का शरीर धारण करेगा। महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत भौतिक कार्यकलाप, ये सभी आत्मसिद्धि में बाधक है। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद जी की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवद्गीता 2:40 में पुष्टि हुई है, नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावना मृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न ह्रास। इसी पथ में की गई थोड़ी सी भी सेवा बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत के जैसा संन्यास श्री भगवान के अनुग्रह से संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनकी सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अधिक अधिक फंसते जाते हैं, परंतु महाराज प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए तमाम बाधाओं के होते हुए भी वे अपने अंदर कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सके। महाराज प्रियव्रत की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रातःकालीन भागवत कथा में आप सभी भक्तों का सादर स्वागत करता हूँ। साथ साथ ये आशा भी करता हूँ कि भागवत के इस भाव को, इस श्लोक को ठीक ठीक से आप समझ सकें। बहुत दिनों से, लगता है 2 महीने से ये प्रसंग चलता आ रहा है। पंचम स्कंध भागवत के 10 लक्षणों में से स्थान का वर्णन करता है। स्थान, स्थिति, स्थितिर वैकुंठ विजयः, अर्थात ये जो भूगोल, खगोल हम देख रहे हैं, हमारी ये सुंदर हरी भरी धरती, ऊपर अंतरिक्ष में जगमगाते हुए सितारे, ये बादल, ये सागर और ये मनुष्य, पशु पक्षी, ये जहाँ जहाँ जिनकी स्थिति है, इसमें सब ईश्वर का नियंत्रण है। इसी बात को समझाने के लिए इस प्रकरण का उद्घाटन किया जा रहा है। आगे तो खगोल भूगोल की बात आएगी, पर इससे पहले एक महान भक्त की कथा कही जा रही है। आप सभी भक्तजन जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कथा 2 प्रकार की है। एक तो है जो साक्षात कृष्ण कहते हैं और दूसरी कथा है जो कृष्ण के भक्तों के बारे में है। हम समझते हैं और हमारी मान्यता है, आप भी हमारी मान्यता के साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते, पर जब हमसे सुनेंगे तभी हम समझते हैं कि आप मेरा समर्थन करेंगे। भगवान की कथा से भगवान के भक्तों की कथा अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि भगवान कभी पतित नहीं हो सकते, उनके जो भी कार्यकलाप हैं वो हमेशा ऊंचे धरातल पर ही रहता है। क्योंकि सब लोग जानते हैं भगवान ने गीता में कहा कि मैं अपनी माया को अपने अधीन में रखते हुए मैं अवतरित होता हूं, संभवामी आत्म माया। तो माया का जिन पर कोई प्रभाव नहीं है उनका उत्थान पतन की कोई संभावना ही नहीं है, उनके पतन की कोई संभावना नहीं। लेकिन हम जैसे भक्तों के जीवन में अनेक बार सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिरना हो जाता है। कई बार नहीं, अक्सर प्राय होता है। ऐसा आज तक कोई मानवीय बालक मानव शिशु नहीं हुआ जो बस बिना गिरे ही चल पड़ा। यहाँ पर जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं कोई नहीं कह सकता कि बचपन में उन्होंने साइकिल चढ़ना सीखा बिना गिरे। वो कितने बार पैर छिल जाते हैं, हाथ छिल जाते थे, नाक भूमि से पिट जाती थी, बिना गिरे कोई नहीं चढ़ता। और भगवान का गिरना संभव नहीं है। इसलिए भक्तों के चरित्र में क्या होता है, भक्त गिर करके उठता है। उनके उत्थान और पतन की जिंदगी से हमको एक खुराक मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस कथा से ईशानु कथा अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथा माने भगवान की कथा, ईशानु कथा माने भगवान के भक्तों की कथा। इसलिए भागवत में तरह तरह के भक्तों की कथा का अवतरण किया गया है। ध्रुव ने कैसे भगवान को पाया, प्रहलाद ने कैसे पाया, पर प्रहलाद ने जैसे पाया ध्रुव की पद्धति वैसे नहीं थी, बिल्कुल अलग। कुंती को कैसे प्रभु की प्राप्ति हुई, धृतराष्ट्र को कैसे प्रभु मिले, गांधारी को कैसे प्रभु मिल गए, सब डिफरेंट, सब अलग अलग। हम लोगों का स्वभाव, हम लोग का चरित्र, हम लोग का गठन सब अलग अलग है। भगवान के बगीचा में हम लोग एक एक फूल है, सबकी सुगंध अलग है, सबके विचार अलग है। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग भी, भगवत प्राप्ति करने का जो उपाय भी हर एक भक्त से अलग अलग होता है। सो प्रियव्रत महाराज जी का जो प्रसंग हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने कई दिनों से सुना है, वो अद्भुत कार्य किए। कैसा अद्भुत कार्य किए, बोले सूर्य जब गतिमान होते थे उनके पीछे अंधकार होता था, उस अंधकार को हम मिटा देंगे। यानी कि प्रकृति के जो नियम है उसको हम उलट देंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु सोचता था बिना मेहनत का फल फलेगा, किसान बिना जोते बोए उसको फसल मिल जाए, ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। नदी का पानी का प्रवाह है पर उस प्रवाह को रोक करके अब ऊपर की ओर बहा देना, ये बहुत सामर्थ्य चाहता है। इसलिए प्रियव्रत महाराज जी के जीवन में आप बहुत बड़े कर्म देखेंगे। रथ के पहियों के रगड़ से प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने सप्त सागर को बना डाला, सूर्य के अंधकार को मिटा डाला। आगे चल के आप श्लोक में पढ़ेंगे कि प्रियव्रत महाराज ने जो किया है आज तक किसी ने वैसा नहीं किया, ना कर सकेगा। लेकिन उनके जीवन में एक ये श्लोक है। क्या श्लोक है आप लोग जानते हो, जब प्रथम ये पंचम स्कंद का प्रारंभ होता है, परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव से एक प्रश्न करते हैं, प्रियव्रत भागवत आत्मा रामो कथम मुने गृहे रमत जन्मूल कर्म बंध प्राभव। हे गुरुदेव आप कृपा करके बतलाइए, ये महाराज प्रियव्रत जैसे महान भक्त आत्मारामी पुरुष ये घर संसार में कैसे रच पच गया? क्योंकि घर संसार की जो मूल है, जो जड़ें हैं, वो अविद्या से ग्रथित है और कर्म बंधन से जड़ित है। वह घर संसार में फंसा हुआ व्यक्ति वो तो अपने आप को फंसाता चला जा रहा है, तो उसकी मुक्ति की क्या है संभावना है। इसलिए परीक्षित महाराज ने बिल्कुल प्रश्न कर दिया, प्रिय व्रत भागवत आत्माराम कथम मुने। वो हो केवल भागवत नहीं थे, वो आत्माराम ही भागवत थे। हम लोग तो सब भागवत हैं पर आत्माराम ही नहीं। आत्माराम ही होने का जरूर प्रयास करते हैं लेकिन मंजिल बहुत दूर है। वो हो जो अंत सुख अंतराराम तथांतर ज्योतिरेवच सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। आत्मारामी योगी कभी दुखी नहीं हो सकता। आत्मारामी मुनि के लिए बाहरी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर हमारा सुख बिल्कुल परतंत्र है। कोई व्यक्ति थोड़ी सी बात कह दी हमारे मन में दुख हो गया, कोई व्यक्ति थोड़ी सी हमारी तारीफ कर दी तो हमको प्रसन्नता हो गई, हम बिल्कुल परतंत्र है जी आप देखिए। लेकिन आत्मारामी व्यक्ति वो अपने आप में मस्त रहता है, उसको अपने सुखों के लिए किसी भौतिक वस्तु की जरा सी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए परीक्षित महाराज जी का प्रश्न एकदम उचित था कि प्रिय व्रत भागवत आत्माराम कथम मुने, कैसे हुआ, कथम माने कैसे। गृहे अरमतः, गृह शब्द का अर्थ होता है गृह माने गृहिणी, यानी कि पत्नी से सुख की कामना करना। यनमूल जिनकी जड़ें कर्म बंध पराभव, दो बात देखिए। कर्म बंध माने, कर्म बंधन शब्द का अर्थ होता है तुमको देह धारण करने के लिए बाध्य कर देगा, इसको कहते हैं कर्म बंध। परसों दिन परम पूज्य श्री क्रतु महाराज जी की क्लास थी और कोई एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे पाप और कर्म बंध के बारे में। अब इसको स्पष्टतया समझ लीजिए, कर्म बंध माने फल भोगने के लिए शरीर मिलना अवश्यंभावी है। अब जब तुम फल भोगना ही चाहते हो तो शरीर से रहित कैसे हो सकते, नहीं हो सकता। तुमने अगर बैंक से लोन लिया है तुमको कर्जा चुकाना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते, या तो एक दिन तुम्हारे घर को कुर्की करके ले जाएगा, दिवालिया कर देगा। इसलिए कर्म बंध और पराभव, पराभव शब्द का अर्थ होता है तुम्हारी स्वरूप की विस्मृति है, कृष्ण चेतना की विस्मृति हो जाएगी। जो हम नित्य है, चेतन है, अमल है, सुख के आगार है, वो बिल्कुल जीवात्मा भूल बैठेगा, बस दुख ही दुख, दुख ही दुख सड़ता रहेगा। इसलिए दो बात कह दिए, कर्मबंध और पराभव। सुखदेव गोस्वामी उनकी बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बोले बिल्कुल बाढ़म, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या कहा, बोले स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिन्वंती। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न एकदम उचित है। क्या उचित है, स्वाम शिवतमाम पदवीम, आपने मंगलमय स्वरूप को कोई भी भक्त खोना नहीं चाहेगा। अरे भाई मंगल तो नहीं है इसलिए बार बार स्तुति करते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, हे प्रभु हमारे अमंगल का हरण करो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलायतन हरि, हे प्रभु हमारे जीवन में अमंगल है अमंगल है, आप आओ हमारे जीवन में मंगल करो। हरि शब्दे नाना अर्थ द्वित प्रधान, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। अगर हमारे जीवन में मंगल होता तो हरि भजन की क्या आवश्यकता थी मेरे मित्रों, नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बाढ़म, जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा, प्रायण स्वाम शिवतमाम पदवीम न हिन्वंती। बुद्धिमान लोग अपने स्वरूप से विच्युत होना कभी नहीं चाहेंगे, नो नेवर। और विवाह हो गया, दो दो विवाह, फिर उसमें 14 बच्चे हो गए, 11 अर्बुदों वर्षों तक शासन करना, आप हिसाब लगाओ 11 अरब वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं, उसमें प्रिय व्रत जी का जीवन काल इतना लंबा होता है, आप हिसाब करते थक जाओगे। कल्पनातीत समय 11 अर्बुदों वर्षों तक शासन किया, माने विषय भोगों को भोगा, स्त्री के साथ बच्चे पैदा हुए, शासन है। परंतु अब उनके भाग्याकाश में नवसूर्य का उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे श्लोक में कहा गया संगति उनकी अच्छी थी। अच्छी संगति में जाओगे तुम्हारा फल अच्छा होगा। साधुते होए न कार्य जहानी, ऐसा न हटी करी हो पहचानी। हमारे लिए दुखद बात यह है कि हम अपने जीवन में मित्र नहीं चुनते। वो जिस किसके साथ मित्रता कर बैठते हैं, नहीं, एक मणि जितना महत्वपूर्ण है, मित्र का महत्व उससे कहीं अधिक है। जिसके जीवन में एक अच्छा मित्र मिल गया, हम समझते हैं कि जीवन में वो सबसे बड़ा धनवान बन गया। विभीषण को हनुमान मिल गए और क्या मिलना बाकी रहा? सुग्रीव जी है कि नहीं, सुग्रीव जी को हनुमान मिल गए, क्या मिलना बाकी रह गया? क्या बाकी रहा? नारद जी के संगति के प्रभाव से, उनके सेवा के प्रभाव से, प्रताप से प्रियव्रत महाराज जी के मन में आज पश्चाताप हो रहा है। ये ध्यान देना चाहिए मेरे मित्रों। प्रभुपाद जी ने एक एंगल में तात्पर्य लिखा है, अब एक दूसरा भाव सुने। ये श्लोक बिल्कुल पश्चाताप का उद्रेक कर रहा है। अहो बस हो गया, यही ये पश्चाताप। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक जीवन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं आता, पछतावा नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, ए गुड सोल कैन रिपेंट एंड रिग्रेट। एक अच्छा आत्मा, एक सुंदर आत्मा, एक शोभन आत्मा, वो पश्चाताप करता है और दुख प्रकट करता है। बुरा आदमी के जीवन में कभी पछतावा नहीं आता। जिसके जीवन में पछतावा है, मानना चाहिए कि वो के अच्छा इंसान है। ग्रेट सोल, प्रभुपाद जी लिखते हैं, द ग्रेट सोल हैज टू क्वालिटी, रिग्रेट एंड रिपेंट। वो दुखी होता है, हाय हाय मेरे से क्या हो गया। आज प्रियव्रत महाराज दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? स्वाम शिवतमम पदवीम न प्रायण हिन्वंती। अपने मंगलमय स्वरूप को कौन खोना चाहेगा? यदि कोई व्यक्ति बड़े धनवान है, आराम से अपनी जिंदगी गुजार कर रहा है, और उसको कहा जाए उसका धन छीन लिया जाएगा और उसको जबरदस्त दुख दे दिया जाएगा, क्यों राजी होगा? कोई राजी नहीं होगा जी। सुंदर वातावरण में रह रहा है, सब कुछ अनुकूलता है, व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो वैकुंठ का आनंद लूट रहा है, वो जब भौतिकता में आ जाता है, उसके मन में कितना खेद होता है। अगर खेद नहीं होता है, वो एक पशु है। द एनिमल नेवर रिग्रेट, पशु कभी पछतावा नहीं करता। यही होता है मेरे मित्रों। अब एक साधु और असाधु में यही अंतर है, एक संसारी और एक महात्मा में यही अंतर है। गलती दोनों करते हैं, लेकिन साधु गलती को स्वीकार करता है और उस पर पश्चाताप करता है, उसके लिए दंड भोगने के लिए तैयार होता है, लेकिन असाधु ऐसा नहीं करता है। बस दिस इज द डिफरेंस, इतना ही है। इसलिए प्रियव्रत महाराज यहां कहते हैं, अहो असाधु अनुष्ठितम, मैंने निंदनीय कर्म कर बैठा। निंदनीय माने कौन सा कर्म कर बैठा? वंदनीय वही है जो राम के हरि के साथ है, निंदनीय वही है जो हरि से बिछुड़ गया है। और क्या हो सकता है निंदनीय संसार में? किसी व्यक्ति ने अपने पिता को भुला दिया है, माता को भुला दिया है, उससे बढ़कर के निंदनीय संतान और संसार में कौन होगी? वंदनीय सोई जगजसु पावा, वो व्यक्ति वंदनीय हो जाता है, वो व्यक्ति प्रशंसनीय हो जाता है, उस व्यक्ति की वाहवाही होती है यदि उसने इस संसार को छोड़कर के कृष्ण के चरण में अपने आप को सौंप दिया है, वो वंदनीय है। इसी को ईसा कहते थे, यदि तुमने हरि को छोड़ा, तुमको संसार मिला तो तुमको क्या मिला? और यदि हरि तुमको मिल गए, संसार तुमको नहीं मिला, तो तुम्हारा घाटा क्या हुआ? त्यक्त्वा चरणाम्बुजम हरि भजन अपक्व अपरिपक्व तो पतित तो यदि ततो को व अभद्र अमुष्य। तो भजन करते करते गिर गया तो उसका घाटा क्या हो गया, फिर भजन में परिपक्वता आ जाए फिर तो कितनी बढ़िया बात है। इसलिए प्रियव्रत महाराज जी को आज रिग्रेशन हो रहा है, आज रिपेंटेशन हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। ये हमारे भक्तों के जीवन में यही बात है प्रियव्रत महाराज। अच्छा ध्यान देना, पश्चाताप में तीन पॉइंट है, तीन पहलू है, और तीनों बातों को लेकर के पश्चाताप की जो क्रिया है प्रक्रिया पूरी होती है। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति ने कोई गलत कर दिया, निंदनीय कर्म कर दिया, फर्स्ट स्टेप पहला सोपान यह होना चाहिए वो एपोलोजाइज करे, उससे माफी मांगे, एजेंट इट, उसको चाहिए कि वो उसके पास जाए और उसे क्षमा की याचना करे। यदि भगवान के दरबार में किया है तो उनके पास जाए, यदि भक्तों से किया है तो भक्तों के पास जाए, एपोलोजाइज। उसके बाद जितना दंड भोगना है उस दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। केवल क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको भोगने के लिए तैयार हो जाए। नंबर टू, नंबर थ्री, उस कर्म नहीं करने के लिए संकल्प ले ले। ऐसा नहीं कि अभी अभी हमने रिपेंट किया फिर पुनर्जागर के वही काम किया। इसको परीक्षित महाराज कहते हैं हस्ति स्नानम कुंजर शौचवत। ध्यान देना चाहिए, तीन तीन क्रिया है, पछतावा और पनिशमेंट और डिटर्मिनेशन। ये पश्चाताप के तीन तीन पहलू है, तीनों पहलू में पूरा हो जाता है। और हम देखते हैं ऐसे भागवत में तीन राजा ऐसे होते हैं, तीन राजाओं के जीवन में ये पछतावा आया है, और ये दोनों बड़े बड़े राजा। और ये बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, भागवत का प्रारंभ होता है पछतावा से। भागवत की शुरुआत होती है महात्माओं पछतावा से। और एक आश्चर्य है, जब हम देखते हैं इसमें आता है कि पछतावा करने के लिए तीन राजा ऐसे हुए हैं जिनके नाम भी प से ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले राजा हुए महाराज परीक्षित, चंद्रवंश के दो राजा परीक्षित, और एक महाराज हुए पुरुरवा, और ये प्रियव्रत। दोनों का नाम, तीनों का नाम प से ही प्रारंभ। और तीनों का पछतावा देखिए, परीक्षित महाराज जब सर्प लपेट दिए उस श्रृंगी मुनि के पिताजी के गले में, जब उनको श्राप हो गया, वो घर पे अपने महल पे वापिस आते हैं, आहा हा परीक्षित महाराज पछतावा करते हैं, पश्चाताप करते हैं। महीपति तत्कर्म गर्हयन् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचम नार्यवत् कृतं नीरागसी ब्रह्मणि गूढ तेजसी। महीपति तत्कर्म्य गह्यन विचिन्तयन आत्मकृतं सुदुर्मना। ओहो हो, उनका मन टूट गया, वो सोच रहे हैं मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? निरागसी ब्रह्मणी गूढ़ तेजसी, उस निष्पाप ब्राह्मण के गले में हमने मृत सर्प डाल दिया, महापाप मैंने कर दिया। रिग्रेट, पछतावा। वो क्षमा याचना करने के लिए तैयार है, वो चाहते थे कि हमको क्षमा कर दे, लेकिन परीक्षण में दंड लेने के लिए तैयार हो गए। अद्य मे राज्यम बलमृद्ध कोशम, बोले मेरा राज्य बल कोष दहतु ब्रह्मा कुलो नल में, वो ब्राह्मण कुल का जो मैंने अपमान कर दिया उससे जो अग्नि पैदा होती है उससे नष्ट हो जाए। उससे क्या होगा? नमे पुनर्भूत, और हमारे भीतर ये पाप मति पैदा ना हो, जो मैं ब्राह्मणों को अपमान कर सकूं, जो मैं निरादर किया इससे जो पाप हुआ, ऐसे मति दोबारा उत्पन्न ना हो जाए। बस पछतावा करके बैठ गए। ध्यान देना चाहिए, पछतावा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति लंबे समय तक पछतावा करता है तो उसका आत्मबल गिर जाता है। यही प्रियव्रत महाराज जी के जीवन में भी देखोगे। आप कहोगे हाय हाय हमसे ये हो गया, हाय हाय हमसे क्या हो गया, हाय हाय करते करते हरि तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए पछतावा एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक जो पछतावा करते हैं उनके भीतर डिप्रेशन पैदा हो जाता है, ये ध्यान देना चाहिए। पश्चाताप रिप्रेंटेशन रिग्रेशन होना जरूरी चाहिए, लेकिन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगो, फिर दंड भोगने के लिए तैयार हो, फिर डिटर्मिनेशन, ये जो डिटर्मिनेशन है यहीं तक है कि आज से ये कर्म हम और दोबारा नहीं करेंगे, बस इसी से समाप्त। परीक्षित महाराज जी ने जब किया, क्या दोबारा उसने ऐसी गलती कर दी? नहीं, दोबारा क्या करेंगे, भोजन पानी तो छोड़ दिए। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित चार दिन कथा को हो गए, तुम भूखे हो प्यासे हो, थोड़ा सा जल थोड़ा दूध पी लो, उन्होंने कहा नयसाति दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्यूतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, आपके मुखचंद्र से जो कथामृत की धारा का प्रभाव हो रहा है, बस उससे हमारी प्यास हमारी भूख हमेशा हमेशा के लिए पूछ गई, आप हमको कथा सुनाई। ये डिटर्मिनेशन है। इसलिए मित्रों, हमारे जीवन में जो गलतियां होती हैं, ये तीनों चीज नहीं हो पाती है। ना तो हम एपोलोजाइज करते हैं, ना तो हम उस कर्म को नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, ना तो हम उस कर्म के जो परिणाम के स्वरूप दंड है उसको भोगना चाहते। बस दिस इज द डिफरेंस प्रियव्रत और हमारे में। इसलिए प्रियव्रत महाराज की कथा भागवत के अंतर्गत आ गया और हमको कोई बासी पानी से नहीं पूछेगा, यही कह रहे हैं। अब दूसरे राजा को भी देखिए, पुरुरवा। पुरुरवा जब उर्वशी हाथ से छूटते हैं तो उन्होंने भी कहा अहो अहो में आत्म सम्मोह येनात्मा कृतम योषितम क्रीड़ा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। अरे देखो देखो, मैं नरदेव शिखामणि हूं, जितने राजा है उनके चक्रवर्ती सम्राट हूं, फिर भी उर्वशी ने मुझे आंखों के इशारों के बल पर नचाती थी। मृग मृग माने पशु, यहां श्रीधर स्वामी करते हैं क्रीड़ा मृग माने बंदर। हा क्रीड़ा मृग, ये बंदरों की भांति हम नाचने लगे क्रीड़ा मृग शिखामणि। पश्चाताप, लेकिन पुरुरवा के पश्चाताप करने के पश्चात किसी ने ऐसा नहीं देखा कि फिर जाकर के वो उर्वशी के पास पहुंच गए। नहीं नहीं हुआ। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। भगवान ने कहा जिस भक्त के जीवन में संकल्प नहीं है उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, कभी नहीं होगा। इसलिए इन कथाओं से हमारे अंदर ये प्रेरणा जगती है कि हमको कम से कम संकल्प जगाना चाहिए। भगवान ने गीता में बार बार कहा मदभक्त दृढ़ निश्चय। प्रभु पाजी ने तो एक गौरैया का दृष्टांत दे डाला, छठे अध्याय भगवद गीता में, सनिश्चय ने युक्तव्य योग अनिर्विण चेतसा। उस भक्त को चाहिए कि भक्ति को उत्साह के साथ और निश्चय के साथ करे, उत्साहत निश्चयात। इसलिए ढीले ढाले भक्त सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। महात्मा गांधी को वो नारा मुझे बहुत प्यारा है, क्या कहा उन्होंने, डू और डाई, करो या तो। बहुत दिन जी के क्या करोगे शिष्यपाल जी, बहुत रोटी खा ली, बहुत पापड़ बेला, धक्के बहुत खाए, और कितने दिन धक्के खाने का मन है, फिर भी हम वहां ही जाते हैं। यही है प्रियव्रत और शिष्यपाल जी में अंतर है। आप शिष्यपाल, आपके लिए हम नहीं कह रहे, जितने शिष्यपाल है, जितने शिष्यपाल है। अरे भाई, ब्याह तो करने को सबको इच्छा है, कृष्ण से ब्याह करें, लेकिन ये जो माया है ये हटा देते। पर पुरुरवा का जो दृढ़ निश्चय है उन्होंने कर लिया, और प्रियव्रत महाराज वही कर रहे हैं।
वही है,
तीन लोग है, पश्चाताप तीन राजा कर रहे हैं, बड़े संयोग से तीनों के नाम पाव में है, परीक्षित, पुरुरवा और प्रियव्रत महाराज। और भी अनेक भक्त हैं लेकिन ये तीन राजा प्रधान है। और प्रियव्रत क्या कह रहे हैं, जद अभिनिवेशित तो अहम इंद्रिय अविद्या रचित विषम विषयांधकूप तदलम अलम अमुष्या बनिताया विनोद मृग माम धिक धिक इते ग्रह यांचकार। धिक धिक मुझे धिक 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 माने बस हो गया, अलम माने हो गया बस और नहीं जाएगा, यही कमी, यही कमी है। लेकिन क्या कहा जाए, यही माया है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, हा हा सुनो मीते यह अकथ कहानी समुझत बन तीन जाई बखानी। अरे मित्र, ये जो कथा हम कहना चाहते हैं ये अकथ है। सुनो मीत यह अकथ कहानी समुझत बनती न जाई बखानी। ना ये समझा जा रहा है ना ये कहा भी जा रहा है। क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। ये कैसे विडंबना है। आहा, बड़े धनवान चिदानंद रूप उनके हम अंश होकर के भी धक्के खा रहे हैं। जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ बुद्धि है, मान अपमान राग द्वेष लोभ मोह हिंसा दंभ, इसी को अभिनिवेश कहते हैं। अविद्या रचित ये है, क्या करें। सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। यद्यपि वो चेतन है, अमल है, शिवतम है, फिर भी एक बंदर के भांति नाचता है। कीर माने तोता और बंदर, कीर मरकट की नाई, तोते बंदर के भांति नचाता है। क्यों, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की जो गांठ है, रोज रोज बोलते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षयंते चास्य कर्माणि दृष्टो एवात्मनीश्वरी, लेकिन ये गांठ जल्दी नहीं खुलती है। यद्यपि मृषा छूटत कठी नहीं तबते जीव भयो सुखारी संसारी। तब से कहीं अनादि काल से जीव संसारी होने लगा, संसारी हो गया, छूट ही ना ग्रंथि ना भय सुखारी, ना उसके हाथ में सुख लगा ना शांति आई। यही है ग्रंथि, इसी को कहते हैं अभिनिवेश। एक गांठ है अविद्या, देखिए ना अविद्या रचित विषम विषयांधकूप, इसी को कहते हैं विषम। बड़ा कठिन है, दुपट्टा किसके पास है, दुपट्टा लाओ, तुम्हारा दुपट्टा लाओ, इधर लाओ। अब देखिए ये कैसे ग्रंथि अभिनिवेश को कह रहे हैं, यही खड़े रहना, जाओ मत। अब देखिए एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए कि रस्सी है, ठीक है, खेचो जोर से खेचो, ये तो नहीं जा, हमको खींच के ले जा रहा है। यही होता है कि भाई माया का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जीवात्मा को खींच करके माया के दलदल में घुसेड़ दिया। ये रस्सी गांठ पर गई। अब ये देखो, अब इसको जितना खींचोगे उतना उतना ये टाइट होता चला जाएगा। अच्छा एक प्रश्न हम आपसे करेंगे, ये दुपट्टा में पहले का दुपट्टा और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर है, क्या अंतर है। दो गांठ है पर स्वरूप में कोई विकृतता है नहीं। यदि गांठ खुल जाए तो दुपट्टा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, लेकिन गांठ खोलने का तरीका हम गलत कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं। किसी के भीतर राग है, वो कहते हैं हम तो रागी हैं,
किसी के पास धन आ गया वो तो कहता है हम तो धनवान है, तो धनवान माने वो इसको ज्यादा खींच रहा है, खींच करके गांठ को ज्यादा मजबूत कर रहा है। अनुताप कहां से होगा? अनुताप उसको तब होगा, पश्चाताप तब होगा जब उसको पता चलेगा हाय हाय हमारा दुपट्टा बढ़िया था, इसमें कहां से गांठ आ गई। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, इसे गांठ को खोलने के लिए प्रयास करेगा। अब देखो वेरी इजी एग्जांपल ये, लेकिन ये जो गांठ है इसमें ये अनुकूल दिशा में नहीं खुलेगी, ये गांठ को खोलने के लिए इसको उल्टा फेर बनाना पड़ेगा। जहां से गया ये जिधर को गया और उधर को खोलने वाला नहीं है। बहुत सरल उदाहरण, इसको खोलने के लिए आपको उल्टा खोलना पड़ेगा। ये देखिए उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत, देखिए बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। इसीलिए भोग में कभी मुक्ति नहीं होगी, जब मुक्ति होगी तो वैराग्य से ही मुक्ति होगी, उल्टी दिशा में। इसी को कभी उन्हें गाया गाया, प्रेम नदिया की उल्टी बहे धार, कौन पावे गो या को पाए। इसी को कहते हैं उल्टी दिशा, और यही बात भागवत में लिखी गई है। सबई निवृत्त धर्मेण वासुदेवानुकंपया। विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहते हैं सबई निवृत्ति धर्मेण, निवृत्ति धर्म माने उल्टी दिशा में चलो। पत्नी है पर पत्नी से नाता क्या करना, जोड़ के। मैंने ये उदाहरण देखो, ये अनुकूल दिशा में गांठ खुलने वाली नहीं है, ये गांठ खुलेगी तो प्रतिकूल दिशा में खुलेगी। तुम्हारे कारण सब जगह छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। अब जिस जिसको भी प्रभु मिले बस वो नाता तोड़ करके ही मिले। अब एक गांठ पड़ा था, मान लीजिए एक क्रोध का गांठ खोला, क्रोध की गांठ कैसे खुलेगा? क्रोध करने से क्रोध की गांठ नहीं खुलेगी, क्रोध के ऊपर क्रोध करना ये अनुकूलता हो गई, वो गांठ ज्यादा जकड़ जाएगी। इसलिए क्रोध को खोलने के लिए प्रेम चाहिए, प्रतिकूलता। निष्ठुरता को काटने के लिए दया चाहिए, और काम को काटने के लिए राम चाहिए। राम माने काम शब्द का अर्थ होता है मेरे पास लाओ, जो है यद पृथ्व्याम ब्रीही जव हिरण्य पशव स्त्रिय। यजाति कहते हैं बोले धरती में जितने ब्रीही, जितने हिरण्य, जितने पशव, जितने नारी सब मेरे पास लेकर आओ हिरण कशिपु की तरह। बोले नहीं होगा, प्रेम शब्द का ठीक उसका उल्टा है कि मेरे पास जितना है श्याम सुंदर सब तेरे लिए। मानस देह गेह जो कि छुमोरा और अपिनो तू आप दे नंद किशोरा। जो भी कुछ है, इसलिए जो भक्त जितना संचय होता है वो भक्ति में उतना कमजोर हो जाता है। लेकिन इस महान विद्या को हम सीखे नहीं, हम तो गांठ के ऊपर गांठ डाल चले। कितने फ्लैट है वृंदावन में? एक। हाँ जी प्रभु जी, दूसरा फ्लैट हम लेना चाहते, पता है आपको? लो एक तो गांठ थी, अब दूसरी गांठ लगा दी, फिर तीसरी गांठ। इसलिए मेरे प्रभु गांठ खोलने के लिए जो प्रतिकूल भाव है यही है सवई निवृत्ति। अब देखो दुपट्टा बिल्कुल ठीक हो गया। सवई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। भक्ति योग भगवती तिरोधत्ते सनैह। भगवान के चरणों में जब हम धीरे धीरे करके भक्ति करेंगे ये गांठ धीरे 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 करके खुल जाती है। पर कैसे ही वो होगा, समस्या तो यहाँ है। तद अलम अलम, ये बस हो गया, कहाँ पर क्यों क्या तकलीफ थी? बोले विषम विषयांध कूप। ओहो, ये जो विषम विषयांध कूप है और हम गिरना नहीं चाहते, अलम 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 अलम, और हम पत्नी के पास जाना नहीं चाहते। क्या करना चाहते? बस ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवाना, माया जाल छोटे पाए कृष्ण रचराना। कितना सुंदर प्यार है चैतन्य चरितामृत। कविराज गोस्वामी कहते हैं गांठ कैसे छूटेगी, बजाओ तो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रा सेवाना, ताते कृष्ण भजे करे, गाइए पंक्ति याद रखिए, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रा सेवाना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रा सेवाना, माया जल छोटे पाए कृष्ण रा चराना, माया जल छोटे पाए कृष्ण रा चराना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे छूटे, वो छूट जाएगा माया का जाल। ये जो अविद्या है, ये अभिनिवेश है, ये जो गांठ है, ये भगवान के भजन से और ज्ञान से और वैराग्य से, ये वैराग्य जो है इसको उल्टी दिशा कहते हैं। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में चलना है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया नाम जप करते हैं बहुत अच्छा है, पर भागवत जब ढंग से ठीक उचित ढंग से हम सुनते हैं हमारे भीतर वैराग्य के ज्ञान की पुष्टि होती है। धीरे धीरे उनकी सहायता से और भक्ति का प्रबल वेग से ये गांठ छूट जाती है, फिर जीवात्मा परम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। 9 बज चुका है, हम चाहते हैं एक आध प्रश्न ले लें, कोई प्रश्न हो तो कर सकते, वैसे तो समय हम नहीं दे पाते। एनी क्वेश्चन, सब समझ गए? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अविद्या माया की जय।